ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संविधान संशोधन और कानून निर्माण में देश और जनता को केंद्र में रखकर काम करने का सभामुख डोल प्रसाद अर्याल का प्रतिबद्धता। स्वास्थ्य सेवा कार्यविधि न आने तक सेवा निरंतर संचालन करने का स्वास्थ्य मंत्रालय का आग्रह। आपराधिक क्रियाकलाप नियंत्रण में निर्मम होकर जुटने का सुरक्षाकर्मियों से गृह मंत्री सुदन गुरुंग का निर्देश। और भारतीय गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन। अब समाचार विस्तार से। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने देश और जनता के हित में तटस्थ रहकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। नेपाल पत्रकार महासंघ द्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में उन्होंने कहा कि वे कानून निर्माण और उसके कार्यान्वयन में निष्ठा और निष्पक्षता के साथ काम करेंगे। सभामुख अर्याल ने बताया कि संविधान संशोधन के साथ साथ नए कानून बनाने में वे एक सहजकर्ता के रूप में देश और जनता को केंद्र में रखकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा, विकास, समृद्धि और खुशी ऐसी चीजें हैं जो एक दिन भी देर किए बिना मिलनी चाहिए, इसलिए मैं ऐसा काम करूंगा जिसे सभी को महसूस कर सके। उन्होंने यह भी प्रतिबद्धता जताई कि जनता को सीधे लाभ मिलने वाले कानून फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बूढ़ी गंडकी जलाशय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार को लगातार सचेत करते रहेंगे। गृहमंत्री सुदन गुरुंग ने मादक पदार्थ तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए सुरक्षाकर्मियों को सख्ती से काम करने का निर्देश किया है। आज चितवन के भरतपुर स्थित नेपाल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में जिले के सुरक्षा प्रमुखों को संबोधित करते हुए उन्होंने जन अपेक्षाओं के अनुरूप सुशासन कायम करने तथा मादक पदार्थ से जुटी घटनाओं पर कड़ाई से नियंत्रण करने को कहा। जिला पुलिस कार्यालय के प्रमुख पुलिस अधीक्षक गोविंद पुरी के अनुसार मंत्री गुरुंग ने जनता को महसूस होने वाली चुस्त सेवा देने पर जोर दिया। उन्होंने कल रात नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र जैसे घोपटेवीर और तुइन खोला का निरीक्षण कर वर्षा ऋतु में समस्या न दोहराने के लिए तेजी से काम करने का निर्देश दिया था। आज ही नवलपुर स्थित सशस्त्र पुलिस बल के कार्यालय पहुंचकर गृहमंत्री ने औपचारिक सलामी न लेने की घोषणा की। उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को तामझाम और औपचारिकता छोड़कर जनसेवा पर केन्द्रित रहने का निर्देश दिया। सरकारी कार्यालयों में फाइलों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने की प्रवृत्ति रोकने के लिए सोमवार से शून्य लंबित फाइल अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य निचले स्तर से आने वाली फाइलों को ऊपर रोककर सेवा प्रभावित होने की स्थिति को कम करना है। सरकार शून्य लंबित फाइल सप्ताह अभियान संचालन मार्गदर्शन 2082 पहले ही जारी कर चुकी है। मार्गदर्शन के अनुसार 3, 7 या 15 दिन से अधिक समय से रुकी फाइलों को स्वतः समीक्षा की जाएगी। नेपाल सरकार द्वारा सप्ताह में 2 दिन सार्वजनिक छुट्टी देने का निर्णय लागू किए जाने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर संचालित रखने का आग्रह किया है। मंत्रालय द्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्ति में मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस उद्देश्य से अवकाश के दिनों में भी सेवाएं जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। विज्ञप्ति में यह भी उल्लेख किया गया है कि डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों तथा सेवा प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त शिकायतों के प्रति मंत्रालय अवगत है और उन समस्याओं के समाधान के लिए सकारात्मक तथा प्रतिबद्ध है। नागरिकों के स्वास्थ्य जैसे संवेदनशील विषय को ध्यान में रखते हुए सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना सभी का प्रमुख दायित्व है, यह भी मंत्रालय ने स्पष्ट किया। मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि सभी संबंधित पक्षों के साथ समन्वय कर स्वास्थ्य सेवा प्रवाह को व्यवस्थित, संतुलित और दीर्घकालीन बनाने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यविधि तैयार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। उक्त कार्यविधि लागू होने तक अस्पतालों से उपलब्ध जनशक्ति और संसाधनों के आधार पर सेवा संचालन करने का अनुरोध किया गया है। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय ने प्रधानमंत्री और मंत्रियों की संपत्ति विवरण सार्वजनिक किया है। मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत संपत्ति विवरण आज सार्वजनिक किया गया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2059 की धारा 50 के अनुसार प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में प्रस्तुत यह विवरण सरकार के मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार सार्वजनिक किया गया है, ऐसा कार्यालय ने बताया। प्रधानमंत्री और मंत्रियों की संपत्ति का विवरण प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर देखा जा सकता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सार्वजनिक पद पर रहने वाले व्यक्तियों को पद ग्रहण करने के 60 दिनों के भीतर और उसके बाद प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर अपने और अपने परिवार के नाम पर मौजूद संपत्ति का विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल और राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दहाल बीच राष्ट्रपति भवन सीताल निवास में आज भेंटवार्ता हुई है। मौके पर राष्ट्रपति पौड़ेल को अध्यक्ष दहाल ने टर्की में होने वाले अंतर व्यवस्थापिका संघ के साधारण सभा में सहभागी होने जाने के विषय सहित अन्य समसामयिक विषयों पर जानकारी कराया। यह जानकारी राष्ट्रपति का स्वकीय सचिवालय ने दी। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 हैश डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री निशा मेहता ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में सेवा प्राप्त करते समय जनता को झंझट नहीं बल्कि राहत का अनुभव होना चाहिए। आज वीर अस्पताल और शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय केंद्र के निरीक्षण के बाद मंत्री मेहता ने अस्पतालों में देखी गई समस्याओं के समाधान के लिए मंत्रालय आवश्यक समन्वय और सहयोग करेगा, यह प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। अस्पताल द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की वास्तविक स्थिति और आम नागरिकों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी देते हुए मंत्री मेहता ने अस्पताल प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को अस्पताल की सफाई पर ध्यान देने, मरीजों की पाली व्यवस्था को तत्कालीन मैत्री और सहज बनाने तथा दवाओं की आपूर्ति में देखी गई बाधाओं को तुरंत दूर करने का निर्देश भी दिये। वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने कहा कि वन उत्पादों का उपयोग आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए होना चाहिए। साथ ही उन्होंने जैव विविधता और वनस्पति संरक्षण को अनिवार्य बताया। वनस्पति दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री चौधरी ने कहा कि जैव विविधता और वनस्पति संरक्षण के माध्यम से खाद्य सुरक्षा, रोजगार और आर्थिक विकास संभव है। उन्होंने कहा कि मानव गतिविधियों, जलवायु परिवर्तन और असंतुलित उपभोग के कारण वनस्पति क्षेत्र संकट में है और समय पर संरक्षण तथा प्रबंधन नहीं किया गया तो भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दांग के तुलसीपुर उपमहानगर पालिका 16 जहदा गांव स्थित ईटा भट्ठे की दीवार गिरने से दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि अन्य एक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जिला पुलिस कार्यालय के प्रवक्ता डीएसपी रेशम बोहरा के अनुसार भारत के बहराइच जिले के 30 वर्षीय तीर्थराम पासवान की मौत हुई है। घटना में 36 वर्षीय देशराज पासवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। झापा के बुद्ध शांति गांव पालिका 3 स्थित मेची राजमार्ग खंड पर 3 मोटरसाइकिलों की आपस में टकराने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। जिला प्रहरी कार्यालय झापा के अनुसार चार आली से बुधबारे की ओर जा रहे एक मोटरसाइकिल दूसरी मोटरसाइकिल तथा विपरीत दिशा से आ रही मोटरसाइकिल से टकरा गई। दुर्घटना में मोटरसाइकिल चालक इलाम नगर पालिका 6 निवासी 25 वर्षीय भूपेंद्र श्रेष्ठ की मृत्यु हो गई, यह जानकारी पुलिस ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत की प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अत्यधिक थकान और छाती में संक्रमण के कारण उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनका निधन हुआ। 1933 में जन्मी आशा भोसले ने 9 वर्ष की उम्र से ही संगीत यात्रा शुरू की थी। 1950 के दशक से उनकी आवाज भारतीय फिल्म संगीत के लोकप्रिय हुई और वे दुनिया की प्रमुख पार्श्व गायिकाओं में शामिल हुई। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में हजारों गीत गाकर भारतीय संगीत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्हें सबसे अधिक रिकॉर्डिंग करने वाली कलाकार के रूप में मान्यता दिया गया था। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संविधान संशोधन और कानून निर्माण में देश और जनता को केंद्र में रखकर काम करने का सभामुख डोल प्रसाद अर्याल का प्रतिबद्धता, स्वास्थ्य सेवा कार्यविधि न आने तक सेवा निरंतर संचालन करने का स्वास्थ्य मंत्रालय का आग्रह, आपराधिक क्रियाकलाप नियंत्रण में निर्मम होकर जुटने का सुरक्षाकर्मियों से गृहमंत्री सुधन गुरुंग का निर्देश और भारतीय गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की आयु में निधन। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।